ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्में जारी की हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली किस्मों से किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये किस्में 61 फसलों की हैं, जिनमें खेती की 34 और बागवानी की 27 किस्में हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने नई किस्में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के बाद आज शाम नई दिल्ली लौट आईं। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात और संवाद भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा से फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के साथ भारत की ऐतिहासिक साझेदारी सुदृढ़ होने के साथ ही नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख भागीदार है और दोनों देशों के बीच के पारंपरिक संबंध अधिक सहयोगात्मक हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने मालदीव में अड्डू शहर के सुधार और तट संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इन दोनों परियोजनाओं में मालदीव सरकार के साथ साझेदारी की है, ताकि अड्डू को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से नेपाल की दो दिन की यात्रा पर हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के विदेश सचिव काठमांडू में नेपाल भारत संबंध, आपसी हित और सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय विदेश सचिव की ये नियमित नेपाल यात्रा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री यूनुस ने विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए वर्ग, धर्म या किसी अन्य आधार पर हिंसा का विरोध करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच भारतीय मूल के अमरीकी सांसदों ने अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में अमरीकी कांग्रेस में सुनवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो कोई विदेशी रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। उन्होंने इस रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर यह भ्रम फैलाकर देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के सेबी प्रमुख पर आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। लगभग तीन सप्ताह तक चली रोमांचक खेल प्रतिस्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन होगा। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शकों के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। समापन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ओलंपिक ध्वज को 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।